अनुभव की अथॉरिटी कैसे बने, ज्ञान के सागर बाबा हमें इतना उच्च कोटि का ज्ञान देते हैं, उस उच्च कोटि के ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण है अपने जीवन में अलौकिक अनुभव करना और कराना। तो जितना जितना हम इस ज्ञान मार्ग में पुराने होते जाते हैं, उतने उतने हमारे पास अलौकिक अनुभव की पूंजी बढ़ती जाती है। और जितनी अलौकिक पूंजी हमारी बढ़ती जाती है, उतना हम निर्विघ्न रीति से आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं। इसलिए कहते हैं, अनुभव की पूंजी सफलता की कुंजी चाबी। जिनके पास अलौकिक अनुभव की अथॉरिटी होती है, उनको विशेष तीन लाभ होते हैं। पहला लाभ, अनुभव की अथॉरिटी वाले आने वाले हलचल के समय भी स्वयं के स्थिति को अचल बनाने में सफल होंगे। दूसरा लाभ, हलचल वाली परिस्थिति में अचल रहकर अनेक आत्माओं की सेवा करने की क्षमता वाले होंगे। तीसरा लाभ, ऐसे अलौकिक अनुभव की अथॉरिटी वाली आत्माओं के द्वारा ही इस संसार में परमात्म प्रत्यक्षता होगी। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। तो परमात्मा जो गुप्त हैं, जिनकी शक्तियां भी गुप्त हैं, उनकी प्रत्यक्षता इस संसार में ऐसे अनुभवी आत्माओं के द्वारा होगी। इस ज्ञान मार्ग में आने के बाद अगर कोई भी अलौकिक अनुभव करना हम चाहते हैं, तो उसके लिए एक शर्त है, एक कंडीशन है, अनुभव। जब तक स्वयं को अनु नहीं समझते हैं, बिंदु नहीं समझते हैं, स्टार नहीं समझते हैं, तब तक इस ज्ञान मार्ग में कोई भी अलौकिक अनुभव नहीं होता है। लेकिन जैसे स्वयं को अनु समझते हैं, बिंदु समझते हैं, तो अलौकिक अनुभव की वर्षा हमारे पर होती रहती है। अलौकिक अनुभव की खान जैसे हमें मिल जाती है। अभी मैं आत्मा अनुभवी बना हूं या नहीं, कैसे पता चलेगा? जितने पुराने हो जाते हैं, हम बहुत अपने मस्ती में रहते हैं, नशे में रहते हैं, लेकिन पुराने होने की निशानी क्या है? अनुभवी आत्मा होने की निशानी क्या है? वो निशानियां जब तक हमारे जीवन में नहीं दिखाई देगी तब तक कोई भी हमें अनुभवी आत्मा नहीं स्वीकार करेगा। तो अनुभवी आत्मा के मुख्य पांच निशानियां हैं। उन निशानियों को अपने जीवन में हम चेक कर सकते हैं और उससे हमें पता चलता है मैं कितना अनुभवी बना हूं, कितनी मेरे पास अलौकिक अनुभव की अथॉरिटी है। ऑलमाइटी अथॉरिटी के बाद दूसरी अथॉरिटी है अनुभव की अथॉरिटी। तो पहली निशानी, अनुभव की अथॉरिटी वालों के चेहरे पर नारायणी नशे की झलक दिखाई देती है। जैसे इस संसार में जो धनवान होते हैं धन के नशे की अकड़ उनके चेहरे पर दिखाई देती है, मैं धनवान हूं, धन बैंक में पड़ा होगा, धन घर में पड़ा होगा, लेकिन चेहरा बोलता है मैं धनवान हूं। ऐसे जितना अलौकिक अनुभव रूपी धन हमारे पास बढ़ता जाता है उतना हमारे चेहरे पर ईश्वरीय नशे की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। संपन्नता और संतुष्टता उनके चेहरे पर हर कोई पढ़ लेता है। मेरा बाप सागर है, उस सागर से मैंने बहुत कुछ खजाने प्राप्त किए हैं, इसलिए मैं संपन्न हूं, इसलिए मैं संतुष्ट हूं। दूसरी निशानी, ऐसे अलौकिक अनुभवी आत्माएं अपने जीवन को रोचक और रोमांचित बनाते जाते हैं। हम देखते हैं कई बच्चे बाबा के पास आते हैं, थोड़ा समय चलते हैं और बाद में धीरे धीरे टूटने लगते हैं, बाबा से दूर जाने लगते हैं। इसका कारण क्या है? अनुभव की कमी। मैं वहां जाता हूं मुझे कुछ अनुभव होते नहीं है इसलिए मुझे वहां नहीं जाना है। लेकिन जिनके पास अलौकिक अनुभव की पूंजी होती है उनके पास एक कला होती है, वो अपने जीवन को रोचक और रोमांचित बनाते जाते हैं, इंटरेस्टिंग बनाते जाते हैं और आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं। हमने देखा हमारी दादियां 85 वर्षों से चल रही हैं, लेकिन कभी भी उनके मुख से नहीं सुना है कि ये ब्राह्मण जीवन हमें बोर होता है, क्योंकि उनके पास वो कला थी अपने जीवन को रोचक और रोमांचित बनाने की। ऐसी आत्माओं के पास रूखापन, उदासी और निराशा फटक नहीं सकती है। तीसरी निशानी, ऐसे अनुभव की अथॉरिटी वाली आत्माएं हमेशा आत्मोन्नति में मगन रहती हैं, क्योंकि बाबा ने हमें हर एक पुरुषार्थी को दो खजाने दिए हैं, समय का खजाना और संकल्पों का खजाना। अनुभवी आत्माएं इन अमूल्य खजानों को अच्छी तरह से यूज करते हैं, वो दूसरों को देखते नहीं हैं, इधर उधर की बातों में नहीं जाते हैं और समय और शक्ति के खजाने को यूज करते हैं और सदा आगे बढ़ते जाते हैं। अपनी घोट तो नशा चढ़े, ये युक्ति ये फ्रेज उनके जीवन में स्पष्ट दिखाई देती हैं। इसलिए हर कोई उनके कंपनी में रहना चाहता है। इनके कंपनी में रहने से मुझे कुछ प्रेरणाएं मिलेगी, कुछ टचिंग्स मिलेगी, कुछ युक्तियां मिलेगी, जिससे मैं सदा आगे ही आगे बढ़ता जाऊंगा। चौथी निशानी, ऐसे अलौकिक अनुभव की अथॉरिटी वाली आत्माएं दुआओं के पात्र बनती जाती हैं। जब वो अपने अलौकिक अनुभव दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो दूसरों को ऐसे अलौकिक अनुभव करने की हिम्मत, साहस और प्रेरणा मिलती हैं। मुझे याद है मैं 73 में पहली बार मधुबन में बाबा से मिलने आया था, मुरली में बाबा के सुनता था आजीवन पवित्रता को धारण करना है, सोचता था कैसे यह संभव होगा। लेकिन मधुबन में एक भाई का चेहरा मैंने चमकता हुआ देखा और उनको बुलाकर उनसे पूछा, ईमानदारी से अपना पवित्रता के बारे में मुझे अनुभव सुनाइए। उन्होंने मुझे अनुभव सुनाया और अनुभव सुनकर मुझे प्रेरणा मिली कि अगर ये आत्मा इतनी पुरानी होते हुए अच्छी तरह से पवित्रता को धारण कर सकती हैं तो मैं भी कर सकता हूं। मेरे दिल से उनके प्रति दुआ निकली। तो ऐसे अनुभवी आत्माओं को 3 सर्टिफिकेट बहुत सहज रीति से मिलते हैं, मान पसंद, लोक पसंद और प्रभु पसंद। परमधाम रूपी घर वापस जाने के पहले हमने ये 3 सर्टिफिकेट लेने हैं। आप इस ज्ञान मार्ग में कितनी भी सेवा करो, घोड़े की तरह भागते रहो, लेकिन जब तक आपकी स्थिति अच्छी नहीं होगी तब तक आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, अपने को आप पसंद नहीं करोगे। दूसरी बात, ऐसे अलौकिक अनुभवी आत्माएं दूसरों को आगे बढ़ने के लिए सहयोग देते रहते हैं, इसलिए लोग भी उनको पसंद करते हैं और ऊपर वाला प्रभु भी देखता है ऊपर से कि मैं इतना श्रेष्ठ ज्ञान देता हूं, ये मेरा बच्चा अपने जीवन में धारण करता है, अनुभवी बनता है और अनेकों को अनुभवी बनाता जाता है, इसलिए प्रभु भी उसको पसंद कर लेते हैं। तो 3 सर्टिफिकेट उसको बहुत सहज रीति से मिलते हैं। 5वीं निशानी, ऐसे अनुभवी आत्माएं दुश्मन माया से धोखा कभी भी नहीं खाते हैं, माया की अंधी गलियों में नहीं भटकते हैं, वो हमेशा भूत की चिंता से परे रहते हैं और भविष्य से निश्चिंत रहते हैं और वर्तमान का भरपूर आनंद लेते हैं और अलौकिक अनुभव की पूंजी जमा करते जाते हैं और निर्विघ्न रीति से संपूर्णता के शिखर पर पहुंचते जाते हैं। तो इसलिए इन 5 निशानियों को अपने में चेक करना है, उससे ये पता चलता है कि मैं कितना इस ज्ञान मार्ग में अनुभवी बना हूं और मुझे कितना अनुभवी बनना है। अभी किसी भी बात में जब हम अनुभवी बनते हैं तो अनुभवी बनने में तीन स्टेप्स होती हैं। आप कार चला रहे हैं, इतने दूर से कार चला के आए हैं अपने स्थान से, तो सबसे पहली बात है उसमें आपकी कमांड बढ़ती जाती है। इतना अनुभवी बनते हैं उसमें आपका कमांड बढ़ता है। दूसरी स्टेप, उसमें परफेक्शन हमारा बढ़ता जाता है। और तीसरी स्टेप, बाद में हम उसको एंजॉय करना सीखते हैं। इतने दूर से, दिल्ली से, बलसाड़ से, इतने दूर से कार से आए हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं। तो कोई भी क्षेत्र में हम जितना अनुभवी बनते हैं उसमें ये तीन स्टेप्स हमें अनुभव होती हैं। अभी कौन से बातों में हमें अनुभवी बनना है? जैसे कोई खेल के क्षेत्र में अनुभवी होता है, कोई पॉलिटिक्स के क्षेत्र में अनुभवी होता है, कोई विद्या के क्षेत्र में अनुभवी होता है, तो ऐसे हमें बाबा के पास आने के बाद 10 बातों में, लगभग 10 बातों में अनुभवी बनते जाना है। जब तक संपूर्णता के मंजिल पर नहीं पहुंचते हैं तब तक हमें इसमें थकना नहीं है, अनुभवी बनते जाना है, बनते जाना है। परिणाम स्वरूप हम संपन्न और संपूर्णता के मंजिल पर पहुंचेंगे। पहला क्षेत्र, हमें परम धाम निवासी बनने का अनुभवी बनते जाना है। परम धाम हमारा मूल वतन है। परम धाम का ज्ञान होना ही पर्याप्त नहीं है, वो हमारा घर है, असली घर। उस घर में हमें बार बार जाना है। जितनी बार जाएंगे उतनी बार हमारा अनुभव गहराई से बढ़ता रहे, इस पर हमें ध्यान देना है। उस घर पर अपना अधिकार जमाना है। नए नए बच्चे बाबा के हैं, परम धाम में जाते हैं तो 10 या 20% भान से वहां आप जाते हैं, फिर बढ़ाते जाना है उसकी गहराई को। 30%, 40%, 50%, 100% भान हमारा वहां पहुंचा रहे, तब तक हमने इसमें अनुभवी बनते जाना है। परम धाम रूपी घर की हमें खींच हो, क्योंकि असली हमारा घर ये है। ये तो हमारा सेवा क्षेत्र है, खेल खेलने के लिए हम यहाँ आए हैं, हमारा घर वो है। तो उस पर हमारा अधिकार हमें बढ़ाते जाना है। दूसरा एरिया, हमें सूक्ष्म वतन वासी बनने का अनुभव बार बार बढ़ाते जाना है। वर्तमान समय हमारा घर कौन सा है? टाइटल लेके सारा दिन घूमते हैं, ब्रह्मा कुमार फलाना, ब्रह्मा कुमारी फलानी। तो हमारा बाप कौन हो गया? ब्रह्मा हो गया। तो जहां मेरा बाप रहता है वो मेरा घर कहलाता है वर्तमान समय। तो वर्तमान समय हमारा घर है सूक्ष्म वतन। तो सूक्ष्म वतन का ज्ञान होना ही पर्याप्त नहीं है, लेकिन सूक्ष्म वतन रूपी घर पर अपना अधिकार बढ़ाते जाना है, उसको हमें यूज करते जाना है। 91 में मैंने गुलजार दादी जी का इंटरव्यू लिया था। दादी जी को पूछा था कि दादी जी आखिर बीओ और सूक्ष्म वतन की दुनिया कैसी है, मुझे स्पष्ट कीजिए। तो दादी जी ने बताया था इन पांच तत्वों से परे एक ऐसी अलौकिक दुनिया है जहां हमेशा स्नो व्हाइट ब्राइट डिवाइन लाइट रहती है, श्वेत प्रकाश जगमगाता रहता है। जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा आसमान में रहता है और सारे धरती को श्वेत प्रकाश से जगमगाता है, ऐसे हजारों पूर्णिमा का चंद्रमा का प्रकाश वहां सदा रहता है। दूसरी बात, वहां जो फरिश्ते होते हैं उनकी जो भाषा होती है वो नैनों के इशारे की और होठों के मोमेंट्स की होती है। तीसरी बात, वहां के कारोबार कैसी चलती है, संकल्प शक्ति के आधार पर वहां की कारोबार चलती है। जब भी संदेशी बहन वहां जाती हैं, बाबा को कोई भी दर्श अगर बताना होता है, उस दर्श के द्वारा कोई संदेश हम बच्चों के लिए भेजना होता है, बाबा संकल्प शक्ति के आधार से एक सेकंड में वो इमर्ज करते हैं और संदेशी बहन को अनुभव कराते हैं। मजे की बात ये है, जिस दिन से हमारा अलौकिक जन्म हुआ है उस दिन से हमारा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप हमेशा फरिश्तों की दुनिया में रहता है। बाबा क्या करते हैं, क्या देखते हैं, ये पुरुषार्थी स्वरूप और ये संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप किस पीठ से समीप आ रहे हैं, ऐसा बाबा वतन में देखते हैं। तो ऐसी सूक्ष्म वतन की दुनिया में हमें बार बार जाना है और अलौकिक अनुभव बाबा के साथ करते रहना है और उस घर पर अपना अथॉरिटी बढ़ाते जाना है, अधिकार बढ़ाते जाना है। तीसरा क्षेत्र, वैकुंठवासी बनने का अनुभव हमें बढ़ाते जाना है। 80 और 90 के दशक में बाबा ने अव्यक्त मूल्यों में सारी बातें स्पष्ट कर दी हैं। सतयुग में अमृत वेले से लेकर रात्रि तक हमारी दिनचर्या कैसी होगी, तो केवल वो ज्ञान के हिसाब से नहीं बताया है, वो हमने अभी अनुभव करना है। कैसे सतयुग में हमारा जीवन होगा दिव्यता से भरपूर होगा, निश्चिंत बेपरवाह बादशाह की तरह होगा, वो सब बातें हमने अनुभव अभी करना है। क्योंकि घर वापस जाने के पहले ऐसे रॉयल संस्कार, डिवाइन संस्कार, देवी संस्कार धारण करेंगे तो परम धाम को टच करके जैसे सतयुग में आएंगे उन संस्कारों के आधार पर हमारा जन्म रॉयल परिवार में, राजा महाराजा के परिवार में स्वतः ही होगा। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, वैकुंठवासी बनने का अनुभव हमें बार बार बुद्धि से करते जाना है। चौथा एरिया, आत्म अनुभूति करने का अभ्यास हमें बार बार बढ़ाते जाना है, हजारों बार बढ़ाते जाना है। क्योंकि हमारा लक्ष्य है संपूर्ण आत्म अभिमानी बनना, 100% आत्मा का भान, 0% देह का भान, ये हमारी मंजिल है। इसलिए ये अशरीरी स्थिति का अभ्यास हमें बार बार करते जाना है। लेकिन हम थोड़ा सा इस ज्ञान मार्ग में पुराने हो जाते हैं, हमें सूक्ष्म अहंकार आता है, ये क्या आत्मा, आत्मा का पहला पाठ इन नयों के लिए है, मेरे लिए नहीं है। ये अहंकार हमें इस बात पर मेहनत नहीं करने देता है, उसके कारण हमारी स्थिति लड़खड़ाती रहती है। इसलिए बहुत अच्छी तरह से आत्म अभिमानी स्थिति का अनुभव बढ़ाते जाना है, क्योंकि हमारा अंतिम पेपर यही होगा। एक सेकंड में देह से न्यारे और उसी सेकंड बाबा के प्यारे होना, ये हमारा अंतिम पेपर होगा। इस पेपर में अच्छी तरह से पास होना है तो ये शरीर स्थिति का अभ्यास बहुत नेचुरल होता रहे। पांचवा एरिया है, सदा समानधारी होकर रहना। बाबा ने एक बार कहा था कि समान एक शब्द है, इस समान शब्दों को धारण करेंगे तो बाप समान बन जाएंगे। इस सभा में बहुत रॉयल आत्माएं बैठे हैं, होनहार राजे महाराजे बैठे हैं, लेकिन सतयुग में जो सिंहासन मिलेगा, सिंहासन बैठ पर बैठते समय हमारे चेहरे पर वो रॉयल्टी वो रुहाब होना जरूरी है, लेकिन वो हमें अब भी धारण करना है। उसके लिए बाबा ने समान का सिंहासन हमें दिया है, स्वयं का राजा बनना है, समान के सिंहासन पर डटे रहना है और अपने स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण और अनुशासन करके स्वराज अधिकारी बनना है। और जो स्वयं के राजे बनते हैं वही सतयुग त्रेता युग में औरों के राजे बनते हैं। इसलिए स्वमान में स्थित होने का अभ्यास हमें बढ़ाते जाना है, निरंतर उस स्वमान के सिंहासन पर डटे रहना है। माया हमेशा उस सिंहासन से हमें उतारने का प्रयास करती है और बाबा हमें उस पर बिठाने का प्रयास करते रहते हैं। तो हमें ये बहुत प्राप्तियों का सिंहासन है, किसी भी हालत में ये सिंहासन हमने नहीं छोड़ना है। छठवा एरिया, परमात्म अनुभूति करने का अनुभव हमें बार बार करते जाना है। परम धाम में बाबा के पास बैठने का अनुभव बढ़ाते जाना है। यथार्थ याद है, परम धाम में बाबा के बाजू में मैं आत्मा बैठी हूँ, बुद्धि रूपी नेत्र से बाबा को देख रही हूँ और शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूँ। लेकिन परम धाम में हमें बार बार जाते जाना है और 100% कॉन्शियस से बाबा के पास बैठना है, ये हमारी मंजिल है। फुल कॉन्शियस से बैठना और फुल टाइम अर्थात निरंतर बैठना, इस मंजिल को हासिल करने के लिए इस अनुभव को हमें बार बार बढ़ाते जाना है, इसमें थकना नहीं है। सातवां अनुभव, फरिश्ता स्थिति का अनुभव हमें बार बार करना है। ब्राह्मण जीवन जो पुरुषार्थी जीवन हमारा है, उसका लक्ष्य है संपूर्ण फरिश्ता स्थिति को प्राप्त करना। केवल फरिश्ता नहीं, संपूर्ण फरिश्ता स्थिति। फरिश्ता अर्थात मूल आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की काया धारण की है, तो शुरुआत में अभ्यास करते हैं तो ये लाइट का शरीर होता है, उससे जो लाइट का परसेंटेज रिफ्लेक्ट होता है वो धीरे धीरे बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है और 100% दिव्य प्रकाश पुंज का शरीर का भान होना और 0% स्थूल देह का भान होना, ये हमारी मंजिल है, उसको संपूर्ण फरिश्ता स्थिति कहते हैं। इसलिए हमें बार बार चलते फिरते इस अभ्यास को बढ़ाते जाना है, थकना नहीं है, क्योंकि जब तक फरिश्ता नहीं बनते हैं तब तक देवता नहीं बन सकते हैं। नेक्स्ट है सातवां, आठवां एरिया, बाबा के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति हमें बढ़ाते जाना है। एक संबंध भी हमें मिस नहीं करना है। हमारा लक्ष्य है निरंतर बाबा को याद करना। अभी बिंदु समझकर बिंदु बाबा को याद करते हैं, एक दो घंटे के बाद बोर होता है, क्योंकि ये मनुष्य की टेंडेंसी है, वो हमेशा निवने चाहता है। इसलिए वैरायटी संबंधों के रूप में बाबा को अनुभव करते जाना है। बाबा सर्व संबंधों के शकरीन हैं, सर्व प्राप्तियों के भंडार हैं, सर्व रसों के भंडार हैं, क्योंकि बाबा का ही गायन है पा रस नाथ। वो एक ही ऐसे नाथ हैं जिनसे सर्व संबंधों का रस प्राप्त कर सकते हैं, और सर्व संबंधों की अनुभूति करना क्यों जरूरी है इस पर आपने कभी सोचा होगा गहराई से। दूसरा सीक्रेट इसके पीछे ये है कि 84 जन्मों में हमने अलग अलग रोल बजाना है। जो भी हमें रोल मिलेगा वो हमने बजाना होगा। आधे जन्म मेल के और आधे जन्म फीमेल के मिलते हैं, ये बाबा ने बात स्पष्ट की है। लेकिन जो भी हमें रोल मिलता है वो रोल हम अच्छी तरह से बजा सकें, वो संस्कार अभी हमने भरना है आत्मा में। कैसे भरेंगे? भगवान के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति करके। गाय का बछड़ा जन्म लेता है तो जन्मते ही वो गाय के स्तन के पास दूध पीने के लिए दौड़ता है, उसको कोई वहां ले जाता नहीं है क्योंकि उसमें संस्कार होता है। तो ऐसे हमें अपना संस्कार रोल जो भी हमें मिलेगा वो बजाने का अभी भरना है। इसलिए सर्व संबंधों की सक्रीन जो बाबा है उनके साथ सर्व संबंध अनुभव करते जाना है, और 100% प्यार एक ठिकाने पर ठाकुर बनकर एक ठिकाने पर फोकस करना है। बाबा सर्व प्राप्तियों के भंडार है। और नौवा एरिया है अनुभव की अथॉरिटी बनने के लिए हर गुण का और हर शक्ति का अनुभव मौज आत्मा के पास होना जरूरी है, वरना माया मुझे उसी एरिया में धोखा देगी। हमारा लक्ष्य है सर्वगुण संपन्न सर्व शक्तियों से संपन्न बनने का। इसलिए अष्ट शक्तियों को हमने जीवन में धारण करना है, और जो भी 36 गुणों की माला है वो हमें स्वयं को पहनाना है। कोई भी गुण को मिस नहीं करना है। अगर कोई गुण मिस है उसको चेक करना है, और उसको धारण करने के लिए विशेष 6 मास या 1 वर्ष तक अभ्यास करते जाना है, और सर्व गुण संपन्न सर्व शक्तियों का अनुभव हमारे पास जमा करते जाना है। और 10वां एरिया है मनसा सेवा करने में हमें अनुभवी बनते जाना है। आप देखना 3-4 वर्ष के बाद में केवल मनसा सेवा का बोलबाला चलेगा। बाबा ने स्पष्ट कह दिया है वाचा कर्मणा सेवा कर ली सो कर ली, बाद में करना चाहेंगे तो भी नहीं कर सकेंगे। केवल और केवल मनसा सेवा का बोलबाला होगा। जब हम मनसा सेवा करते हैं तो हमारे मन में संकोच होता है, संशय आता है कि पता नहीं मुझे इस सेवा में सफलता मिलेगी या नहीं। हमारी दादियों को बहुत अच्छी सफलता मिलती थी, क्या इसका कारण है इसको हमने ढूंढना जरूरी है। क्योंकि मनसा सेवा में सफलता न मिलने का पहला कारण है मनसा सेवा करने का साधन इतना शक्तिशाली नहीं है, इतना प्रखर नहीं है। दूसरा कारण, अगर है भी साधन शक्तिशाली तो मनसा सेवा के क्षेत्र में मेरे पास इतने अनुभव नहीं है, इसलिए मुझे इसमें सफलता नहीं मिल रही है। इसलिए मनसा सेवा के क्षेत्र में हमें बहुत अनुभवी बनते जाना है। मनसा सेवा करना अर्थात होल सेल वर्ल्ड वाइड स्पिरिचुअल बिजनेस करना, केवल हम भारत का ही कल्याण करना नहीं है, मेरा बाप विश्व कल्याणकारी है, मैं उसका बच्चा मास्टर विश्व कल्याणकारी हूं, सारे विश्व की आत्माओं की सेवा करना ये मेरा धर्म और मेरा कर्म है। लेकिन ऐसी बेहद की सेवा करने के लिए फरिश्ता स्वरूप की आवश्यकता है और शक्तिशाली योगाभ्यास और पवित्रता की स्थिति की बहुत आवश्यकता है। इन दोनों बातों को हमें बढ़ाते जाना है और फरिश्ता स्थिति में बहुत अनुभवी बनते जाना है। तो इस प्रकार से और भी एरिया हो सकती हैं, तो हमें एक ही तात लगी रहे कि कैसे मैं आत्मा अलौकिक अनुभव की पूंजी बढ़ाती रहूं, ये धन मुझ आत्मा के पास बढ़ता रहे, क्योंकि जब उसमें अथॉरिटी हमारी बनती है तो उसमें हम बहुत निर्भय होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं और अच्छी तरह से हम कमाई करते रहते हैं। इसलिए बाबा का इशारा है कि अभी अनुभव की अथॉरिटी बनते चलो, क्योंकि अनुभवी सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए कहावत प्रसिद्ध है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। अनुभवी वो सातवें आसमान में पहुंचता है, सबसे ऊंची दुनिया परम धाम की वहां पहुंचता है। इसलिए हमें अनुभव की अथॉरिटी बनते जाना है, यही तात सदा लगी रहे। आप सभी को बाबा ने ये इतनी बड़ी लॉटरी दी है, गोल्डन चांस दिया है, वे विश्व के ग्लोब पर सबसे पावरफुल स्थान मधुबन है। इस स्थान पर जो भी आपके मन में आशा है, अध्यात्म आकाश में चाहे जितनी ऊंची उड़ान आप उड़ना चाहते हैं, जो भी अलौकिक अनुभव करना चाहते हैं, इस धरती पर आप कर सकते हैं, क्योंकि इस धरती पर बाबा की एक्स्ट्रा मदद मिलती है। इसलिए जो अनुभव करना चाहें वो इस धरती पर आप कर सकते हैं। इसलिए स्वयं को माला माल करते रहें और अनुभव के खजाने को बढ़ाते चलें, यही हमारा लक्ष्य हो। लेकिन ये बार बार हमें ध्यान देना है, इस ज्ञान मार्ग में चलते हुए अगर आप अचल अड़ोल स्थिति बनाना चाहते हैं, और कोई बनाना चाहता है, मधुबन में जाते हैं तो ब्रह्मा बाबा खड़े दिखाई देते हैं शांति स्तंभ के रूप में। तो ब्रह्मा बाप समान अगर मैं मुझे भी स्थिति बनाना है ज्ञान मार्ग में चलने के बाद, अगर हमने श्रेष्ठ स्थिति बनाने में सफलता नहीं प्राप्त की तो ऐसा कह सकते हैं बाबा से जितना मैंने लेना चाहिए उतना मैंने नहीं लिया। तो इसलिए स्थिति मुझे बनाना है और अचल अडोल स्थिति बनाने का सीक्रेट अगर आप जानना चाहते हैं तो दो बातों पर आपका कमांड होना चाहिए, एक अशरीरी स्थिति पर और दूसरा समान के अभ्यास पर। और इन दो बातों पर अगर आपका कमांड होगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपके स्थिति को हलचल में लाएं। लेकिन इन दोनों बातों पर बुद्धि की पकड़ होना जरूरी है। अशरीरी स्थिति पर बुद्धि की पकड़ हो, किसी भी स्थिति में विदेही स्थिति का अभ्यास हमारा न भूले। जितने हम पुराने होते हैं इस ज्ञान मार्ग में उतनी दिव्यता की शक्ति, रूहानियत की शक्ति, अलौकिकता की शक्ति बढ़ते रहना जरूरी है। मैं आत्मा हूं ये दिव्य स्वरूप में टिकना और सबके दिव्य स्वरूप को देखना, इसको कहते हैं रूहानियत की शक्ति बढ़ाना और समान में स्थित रहना। हमें बहुत अच्छा उदाहरण है, डायमंड हॉल के स्टेज पर बाप दादा आते हैं तो बाबा का चेहरा बोलता है, दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता हमारे सामने आकर विराजमान है, मुख नहीं बोलता है चेहरा बोलता है। तो ऐसे समान में हमें स्थित रहना है और बहुत ऊंची शान में, रॉयल्टी में, रुहाब में रहना है, क्योंकि शेर का बच्चा शेर होता है। तो इतनी दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता के हम बच्चे हैं तो हमारे चेहरे पर वो रुहाब भी होना जरूरी है। लेकिन उसको अनुभव करने के लिए गुप्त ही गुप्त समान का अभ्यास हम करते रहें, आत्मा के साथ समान का टाइटल बांध दे पक्का एकदम, मैं आत्मा महान आत्मा हूं, मैं आत्मा भगवान की नजरों में आई हुई आत्मा हूं, स्व माना मैं आत्मा महान अर्थात मैं महान आत्मा हूं, इसको कहते हैं समान में स्थित रहना। एक बार सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा का और शिव बाबा का डायलॉग चल रहा था, तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को कह रहे थे, ब्रह्मा बाबा मुझे आपके बच्चों को देखकर कभी कभी हंसी आती है, मैं उनको इतना ऊंची नजर से देखता हूं, पता नहीं वो अपने को क्यों इतना ऊंची नजर से नहीं देखते हैं। अब ब्रह्मा बाबा तो हमारी बाजू लेंगे ना भाई, ब्रह्मा कुमार होने के कारण। तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं बाबा, धीरे 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 उनको नशा चढ़ेगा। तो राजा महाराजा बनने के लिए नशे का परसेंटेज बढ़ता रहे, जितना ईश्वरीय नशे का परसेंटेज बढ़ता जाएगा उतना ऊंचा स्टेटस, उतना ऊंचा प्रारब्ध सतयुग में हमें ऑटोमेटिक मिलता है। इसलिए नशा उल्टा है श्यान, ईश्वरीय नशा आत्मा की श्यान है, आत्मा की ज्ञान है, ईश्वरीय ड्रेस ईश्वरीय नशा है। इसलिए समान के सिंहासन पर हमें सदा बैठे रहना है। बाबा की एक आंच है, मेरा हर बच्चा मैं राजा बच्चे के रूप में देखना चाहता हूं, वो आस हमने पूरी करनी है। अगर हम बाबा की आशाओं को पूर्ण नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो स्वयं का राजा बनने के लिए राजा सिंहासन पर बैठता है, राजा शासन करता है। तो मैं आत्मा राजा समान के सिंहासन पर बैठा रहूं और अपने स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों पर शासन करके स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति करता रहूं, इस अनुभव को हमें बढ़ाते जाना है। ओम शांति। अभी हम 15 मिनट ऐसी पावरफुल योग की अनुभूति करेंगे जो बहुत सुंदर अनुभूति में खो जाएंगे। तो सभी एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे, जोरदार तालियां बजाएंगे। और चुस्त और मस्त होके बैठेंगे, सुस्त होके नहीं, चुस्त। योगी माना चुस्त और मस्त होकर बैठने वाले। ओम शांति। ईश्वरी रूपी चैतन्य मकान में मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा मकान मालिक भ्रुकुटि के मध्य आंखों रूपी खिड़कियों के पास विराजमान हूं। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा मकान मालिक पवित्र स्वरूप हूं। पवित्रता का दिव्य और भव्य सुंदर ताज मोज आत्मा ने धारण किया है। परम सुख की अनुभूति हो रही है। मोज निराकार ज्योति बिंदु आत्मा के चहुओर दिव्यता का सुंदर आभा मंडल अनुभव हो रहा है। भगवान की नजरों में आई हुई मैं भाग्यवान आत्मा हूं। भाग्य विधाता भगवान हर रोज मेरे भाग्य के गीत मुरली में गाते ही रहते हैं। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। मैं निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा इस देह रूपी चैतन्य मकान से न्यारी होकर बुद्धि रूपी विमान में बैठकर फरिश्तों की दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूं। इस विश्व के गोले से पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार उड़ती हुई जा रही हूं। ओहो फरिश्तों की नगरी में पहुंच गई हूं जहां चारों सफेद सफेद दिव्य प्रकाश प्रकाश है। मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। कितनी सुंदर हल्की फुल्की ड्रेस यह। ओहो फरिश्तों के शहंशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने दिव्य और भव्य संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे अति प्यारे अति मीठे शिव बाबुल भी उनके भ्रुकुटी में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्नेह के सागर बाबा मुझे अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। स्नेह सागर की लहरें ब्रह्मा बाबा के नेत्र मार्ग से मोहज फरिश्ते की ओर प्रवाहित हो रही है। मैं फरिश्ता स्नेह सागर की लहरों में लहरा रहा हूं। बाबा की बाहों के झूले में झूल रहा हूं। झूलते झूलते बाबा की बाहों में समा गया हूं। परम सुख की अनुभूति हो रही है। बाबा के नैनों में स्नेह के मोती चमक रहे हैं। चिकिले दे बच्चे मैं बेहद खुश हूं। मैंने अपना खोया हुआ लाल 5000 वर्षों बाद पाया है। मैं बेहद खुश हूं। लाडले बच्चे इस फरिश्तों की दुनिया में सदा आपका स्वागत है। जब चाहो जिस भी संबंध की अनुभूति मुझसे करना चाहो करते रहो। प्यारे बच्चे कभी मुझे परम पिता के रूप में अनुभव करो। छोटा बच्चा या बच्ची बनकर मेरी गोदी में खेलो। मेरा आज्ञाकारी वफादार फरमानदार बच्चा या बच्ची बनकर पिता का निस्वार्थ प्यार। मुझसे अनुभव करो मेरे दिल तक तनसीन बच्चे, कभी मुझे परम शिक्षक के रूप में अनुभव करो तो कभी परम सद्गुरु के रूप में अनुभव करो। सचमुच मैं कितनी नसीबवान आत्मा हूं जो डायरेक्ट भगवान के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति करते हुए स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर कर रही हूं। फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी बिंदु आत्मा पुनः बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूं ओहो निराकारी दुनिया में पहुंच चुकी हूं जहां चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल। दिव्य प्रकाश प्रकाश है, शांति ही शांति परम शांति है। कितना प्यारा घर है यह मेरा शांति धाम। ओहो मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राण आधार, सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव बाबुल, मुझ आत्मा के समक्ष विराजमान है। मैं आत्मा अपने दिव्य चक्षु से बाबा के सुंदर स्वरूप को निहार रही हूं, उनकी सुंदरता का आनंद ले रही हूं। बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं, बाबा ज्ञान सूर्य है। इस आकारी दुनिया के सूर्य से कई गुना शक्तिशाली है। शक्तियों के सागर ज्ञान सूर्य शिव पिता से बेहद शक्तिशाली किरणों की तेज बरसात मुझ आत्मा पर हो रही है, होती जा रही है। मैं आत्मा ज्ञान सूर्य शिव पिता से अनंत शक्ति शक्तियां, प्रचंड शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूँ, ग्रहण करती ही जा रही हूँ योग की प्रखर अग्नि में। मेरे जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध हो रहे हैं, दग्ध होते ही जा रहे। मैं आत्मा स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूँ। इतने विशाल परम धाम में मैं ज्योति बिंदु आत्मा ज्योति सागर शिव पिता से महामिलन का आनंद लूट रही हूँ। वहाँ रे मैं, वहाँ मेरे बाबा, वहाँ मेरा भाग्य। शक्तियों से भरपूर आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया से वाया सूक्ष्म वतन साकारी दुनिया की ओर वापिस आ रही हूँ और इस साकारी शरीर पे चैतन्य मकान में प्रकृति के अकाल तख्त पर विश्व कल्याणकारी समान के सिंहासन पर विराजमान हो चुकी हूँ। मद शक्तिशाली आत्मा से शक्तियों की सजीव तरंगे चारों फैल रही है, फैलती जा रही, वायुमंडल को प्रकंपित करके शक्तिशाली बना रही है। जैसे मेरे शिव पिता निराकार ज्योति बिंदु हैं, वैसे मैं आत्मा उनकी संतान भी निराकार ज्योति बिंदु हूँ। अति सूक्ष्म अणु हूँ, अलौकिक अनुभूतियों में खोई हूँ। ओम श्याम।